SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट शनिवार को संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत देते हुए आयकर में बड़ी छूट की घोषणा की, जिसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है।
स्लैब्स एंड रेट्स आर बीइंग चेंज्ड अक्रॉस द बोर्ड टू बेनिफिट ऑल टैक्स पेयर्स। द न्यू स्ट्रक्चर विल सब्सटेंशियली रिड्यूस द टैक्सेस ऑफ द मिडिल क्लास एंड लीव मोर मनी इन देयर हैंड्स, बूस्टिंग हाउसहोल्ड कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन द न्यू टैक्स रेजिम I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%.
इस घोषणा को 5 फरवरी के दिन होने वाले दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली के कुल 1,55,00,000 मतदाताओं में 67% नए स्लैब से प्रभावित होंगे। वित्त मंत्री ने कई और बड़ी घोषणाएं की, जिनमें कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं: 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाना, इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED टेलीविजन के कई आयातित पुर्जों पर टैक्स ड्यूटी में कमी, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू खिलौना उद्योग के लिए नेशनल एक्शन प्लान, जिसके अंतर्गत स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम का निर्माण। वित्त मंत्री ने साल के अंत में चुनाव में जा रहे बिहार राज्य के लिए भी 5 बड़ी घोषणाएं करी। उन्होंने अपने 70 मिनट के भाषण में न केवल 9 बार बिहार का जिक्र किया, बल्कि संसद में भी बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना के विस्तार, 3 नए एयरपोर्ट बनाने और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया। माना जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की 72 सीटों पर असर पड़ सकता है। विपक्षी दल बजट को पूरी तरह चुनावों से प्रेरित बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे बिहार केंद्रित चुनावी बजट बताया।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दाव पे लगा दिया।
दिल्ली चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में 8 मौजूदा विधायकों के इस्तीफे दे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इन विधायकों को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया था। विधायकों ने पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपने इस्तीफे का वीडियो भी जारी किया। मेहरोली से 2 बार के विधायक नरेश यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के लिए हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। उधर विधायकों के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे भी पार्टी छोड़ने के लिए बहुत लालच दिया गया था और लगातार दबाव भी बनाया गया था, लेकिन मैं डरपोक इंसान नहीं हूं और आखिरी दम तक आम आदमी पार्टी में रहूंगा। दिल्ली चुनाव प्रचार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा दर्जनों केंद्रीय और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक रैली में आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए।
साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी गबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है।
जवाब में आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर उनकी पार्टी द्वारा दी जा रही सुविधाओं को समाप्त करने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
बीजेपी ने कहा है कि अगर वो आ गए तो वो दिल्ली वालों की 5 सुविधाएं बंद कर देंगे। फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे। बीजेपी ने ऐलान किया कि ये 5 सुविधाएं बंद कर देंगे। इससे लोगों को लगभग 20,000 से 25,000 रुपए का महीने का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो लोग नहीं चाहते कि इस तरह से उनको नुकसान हो, तो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और जो हम 2100 रुपए वाली हमारी योजना है, उससे लोगों को और भी फायदा होगा। और जिस तरह से बीजेपी वाले पूरे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी देखी नहीं है, तो लोग इस गुंडागर्दी का जवाब उस दिन वोट का बटन दबा के देंगे।
चुनावों से ही संबंधित एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग को मतदान केंद्र पर होने वाले मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों पर हो रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाओं का निपटारा होने तक वोटिंग की वीडियो सुरक्षित रखी जाएं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजीव कुमार की पीठ ने इंदु प्रकाश सिंह की याचना पर सुनवाई की, जिसमें चुनाव आयोग के हर विधानसभा के मतदान केंद्र पर वोटरों की संख्या 1200 से 1500 बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 11 घंटे के दौरान इतना मतदान हो पाना असंभव है, जिससे फर्जी मतदान की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। आज संसद की संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने जा रही है, लेकिन समिति के कांग्रेस सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि रिपोर्ट में से उनके द्वारा असहमति जताए जाने वाले हिस्से को उन्हें बिना बताए एडिट किया गया है। श्री हुसैन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज शेयर करते हुए लिखा, चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना एडिट किया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं। इस आरोप को लेकर संसद में हंगामा होने के आसार हैं। वक्फ विधेयक का संसद में पास होना या न होना भाजपा के गठबंधन सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के रुख पर निर्भर करता है। प्रयागराज महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसमें 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भगदड़ में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए प्रयागराज में भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है और मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। प्रशासन ने 28 फरवरी से 5 फरवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। बसंत पंचमी स्नान को लेकर VVIP मूवमेंट को भी प्रतिबंधित किया गया है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।